मेरे आत्मीय मित्रों नमस्कार। फ्रेंड्स, आज एक अच्छी बात यह है कि छोटी छोटी घटनाओं के रूप में मेरे पास आप सबको बताने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन मुख्य विषय के रूप में आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हम सबके पास है और शायद आपने अनुमान लगा लिया होगा कि यह विषय कौन सा हो सकता है। अखबारों में आप लोगों ने पढ़ा होगा, यहाँ तक कि न्यूज़ में भी आपने सुना होगा कि कल से भारत में 3 दिन का एक सम्मेलन शुरू हुआ है जिसका नाम है मैरिटाइम इंडिया समिट 2021। मैरिटाइम इंडिया समिट जिसका शुभारंभ हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया, और प्रधानमंत्री जी ने शुभारंभ करते हुए एक शब्द दिया, ब्लू इकोनॉमी। ये शब्द ऐसा नहीं है कि उन्होंने नया कोई कॉइन किया है, तैयार किया है, पहले से ब्लू इकोनॉमी की बात की जाती रही है, लेकिन चूंकि इतना बड़ा सम्मेलन है, विश्व स्तर का सम्मेलन है, दुनिया में जो ऐसे देश हैं जो समुद्र के तटों पर हैं वे सब देश इसमें आमंत्रित किए गए हैं। 3 दिन का सम्मेलन है, हमारे न्यूज़ की हेडलाइन है, मैं रेडियो न्यूज़ की बात कर रहा हूँ, और फिर आपके सिलेबस में दिया हुआ इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था, इन सबको यदि आप मिला देंगे तो आपको यह निर्णय लेने में बहुत दिक्कत नहीं होगी कि नहीं नहीं जो ब्लू इकोनॉमी है ये टॉपिक हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और डेफिनेटली ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो स्वतंत्र रूप से आज मैं इसी विषय पर आप सबसे बात करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं अपने ऑनलाइन क्लासेस के जो स्टूडेंट हैं उन्हें याद दिलाना चाहूँगा कि फ्रेंड्स, इसको लेकर के टुकड़े टुकड़े में काफ़ी लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं। हमारी क्या समुद्री क्षमता है, समुद्री उत्पाद की दृष्टि से, मैं सिक्योरिटी की दृष्टि से, नेवल की दृष्टि से नहीं कह रहा हूँ, उस पर आपको बताया गया, सागरमाला प्रोजेक्ट के बारे में आपको बताया गया है, स्पेशल जो इकोनॉमिक जोन बनाए जा रहे हैं खासकर समुद्री तटों को लेकर के, इसके बारे में बातें की गई हैं, मत्स्य संपदा के बारे में, इन सब के बारे में हम लोगों ने बातें की हैं। वे सारे लेक्चर्स सच पूछे तो इसी विषय से जुड़े हुए हैं। आइए अब मैं परत दर परत इसके बारे में आप सबको कुछ बताने जा, तो आइए अब हम इस विषय पर परत दर परत कुछ बातें करें। पहली बात, अंग्रेजी में शब्द है मैरीटाइम, इसी का एक और शब्द है मरीन, और हम बात करते हैं जब हिंदी में इसे ही कहते हैं तो वो है समुद्री, जैसे मरीन प्रोडक्ट, तो मरीन प्रोडक्ट क्या हुआ, हिंदी में इसका अनुवाद होगा समुद्री उत्पाद, तो भाई ओशन प्रोडक्ट हम क्यों नहीं कह दे रहे हैं। तो आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि जो असली में जो मरीन शब्द है वो एक प्रकार का एडजेक्टिव है। ओशन जब हम कहते हैं तो उसका अर्थ हो जाता है समुद्र से, लेकिन जब हम मरीन और मैरीटाइम जैसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो उसका मतलब हो जाता है समझने के लिए समुद्र से संबंधित। जैसे मान लीजिए कि समुद्र से संबंधित आप कोई विषय पढ़ रहे हैं तो ओशन उस सब्जेक्ट का नाम नहीं होगा, वो मैरीटाइम सब्जेक्ट हो जाएगा या मरीन सब्जेक्ट हो जाएगा, इस तरीके से है दोनों एक ही। तो आप अपने दिमाग में बहुत क्लियर रखें कि जब भी इंग्लिश में या हिंदी में ही आपको मरीन या मैरीटाइम लिखा हुआ मिल जाए तो आप ये मत समझिएगा कि उससे कुछ अलग हटकर है। तो समुद्र समुद्र है, और समुद्र से अब आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए, हम जनरल स्टडीज के तहत ही इसे आइए थोड़ा सा एक अलग तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो जब समुद्र का दृश्य आपके मस्तिष्क में आता है, और हम बात कर रहे हैं मरीन की, मैरीटाइम की, यानी कि समुद्र से संबंधित, अब समुद्र की बात नहीं कर रहे हैं, समुद्र से संबंधित, और इस समुद्र से संबंधित से क्या जुड़ा हुआ है, इकोनॉमी, ब्लू इकोनॉमी, यहां ब्लू को आप समुद्र समझ लीजिए। तो कॉमन सेंस के तहत आप क्या क्या अपने दिमाग में सोच पाएंगे, मुझे लगता है कि अभ्यास आप सबको करना चाहिए, क्योंकि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जरूरी नहीं कि सबको आपने बहुत अच्छे से तैयारी कर रखा हो, आपको अपने दिमाग से आंसर तैयार करने पड़ते हैं, यहां तक कि प्री एग्जामिनेशन में भी आपको सही उत्तर तक अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए पहुंचना होता है। तो आपके दिमाग में ये बात आएगा कि अच्छा समुद्र है तो समुद्र में वनस्पतियां होती हैं, कोरल वगैरह जिन्हें हम वनस्पति कहते हैं, समुद्र में जीव भी होते हैं, अलग अलग तरह के जीव होते हैं समुद्र में, यहां तक कि खनिज पदार्थ भी होते हैं, पेट्रोलियम पदार्थ भी होते हैं, यहां तक कि समुद्र की लहरों से आप ऊर्जा भी उत्पादित कर सकते हैं। तो ये सब चीजें हैं। इसका मतलब है कि इकोनॉमी के लिए समुद्र बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं कि समुद्र से आयात निर्यात किया जाता है। तो ये जो वस्तुएं हैं, अब इन वस्तुओं का हमें अपने इकोनॉमी के लिए इस्तेमाल करना है, अपने लोगों के लिए इस्तेमाल करना है, राइट? तभी तो ब्लू इकोनॉमी को आप डेवलप करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, आप ये भी बात बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि अब जब भी आर्थिक विकास की बात की जाती है तो हमेशा सस्टेनेबल शब्द लगा हुआ होता है, धारणीय विकास, सतत विकास, यानी कि हमें अपने समुद्र को इस तरह से विकसित करना है, इस तरह का बनाना है, और वहां जो संसाधन मौजूद हैं उनका इस तरीके से दोहन करना है कि वो सस्टेनेबल हो, यानी कि प्रकृति के विरुद्ध ना हो, वो प्रकृति के साथ चलती रहने वाली हो। ये कॉमन सेंस के तहत मैं आपको ये बातें बता रहा हूं, राइट? तो दोस्तों, सच पूछे तो जब हम ये कहते हैं कि हमें अपने समुद्र का विकास करना है या हम ब्लू इकोनॉमी की बात करते हैं, तो सीधी सी बात है कि सस्टेनेबल यूज ऑफ ओशन रिसोर्सेज, यानी कि जो समुद्र के जो संसाधन हैं उनका सस्टेनेबल तरीके से हमें यूज करना है फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, हमें अपने देश के आर्थिक विकास के लिए। बस खत्म हो गई बात। अब जब आप इस तरह के ग्रोथ के लिए इसको डेवलप करेंगे तो अब आप सोच करके देखिए कि उस डेवलपमेंट के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। देखिए, मैं अभी जितनी भी बातें कर रहा हूं वो आपके दिमाग से निकालने की बात कोशिश कर रहा हूं। सरकार क्या क्या करने जा रही है, क्या क्या और आगे करेगी, हमारे पास आंकड़े क्या क्या है, वो एक अलग बात है। सपोज मान लीजिए कि आपके पास ये सब कुछ भी नहीं है तो क्या आप प्रश्न छोड़ करके आ जाएंगे? नहीं, आपके अंदर ये आत्मविश्वास होना चाहिए कि नहीं, मैं इनके बारे में जानता हूं। हाँ, ये बात अलग है कि वो बिखरे हुए हैं, इधर उधर बिखरे हुए हैं। हाँ, शायद बहुत तथ्यों के रूप में भी नहीं है, लेकिन एक समझ मेरे अंदर है और यही समझ सामान्य ज्ञान कहलाती है। तो अब आप सोच करके देखिए कि अगर आपको समुद्र के रिसोर्सेस का इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करना है तो आप कैसे इस्तेमाल करेंगे, क्या क्या करेंगे? सबसे पहले तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेंगे, ढांचागत विकास करेंगे। तो जब हम समुद्री ढांचागत विकास करेंगे तो ढांचागत विकास क्या होगा, किस तरीके का होगा, आप सोच करके देखिए तो आपको दिमाग आपके दिमाग में बिल्कुल ये बातें समझ में आ जाएंगी। पहला तो आप सोच सकते हैं कि नहीं, हम इनलैंड जो हमारे अंतर्देशीय जो समुद्री मार्ग हैं उनको बढ़ाएंगे, क्योंकि जब आप अंतर्देशीय समुद्री मार्ग तैयार कर लेते हैं तो देखिए वो पर्यावरण की दृष्टि से भी अच्छा होता है, धुआं हुआ उस तरह से नहीं निकलता और बहुत सस्ता भी पड़ता है। तो आवागमन के साधन, सामान पहुंचाने के लिए हम इनलैंड डेवलपमेंट करेंगे, अंतर्देशीय समुद्री विकास करेंगे। हमारे पास जो बंदरगाह हैं उन बंदरगाहों की क्षमता को हम बढ़ाएंगे, बेहतर बनाएंगे, उनका मॉडर्नाइज करेंगे ताकि वहां जितनी भी जरूरी सुविधाएं हैं वो सुविधाएं उपलब्ध हो जाए। ये सब हो गया, ये सब आप करेंगे। फिर आप कोशिश करेंगे कि वहां जो मत्स्य, हमारे कितने सारे मछुआरे हैं, लगभग 40 लाख मछुआरे और कोस्टल एरिया में लोग रहते हैं, उनकी अर्थव्यवस्था को आप सीधे सीधे प्रभावित कर सकते हैं, उनके जीवन स्तर को उठा सकते हैं अगर हमने ये सब किया तो। और ये सब जब हम करेंगे तो बकायदे रोजगार भी के अवसर उपलब्ध होंगे, इकोनॉमी तो बढ़ेगी, रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। तो हम मछली उत्पादन को बढ़ाएंगे, समुद्री जीवों की रक्षा करते हुए उनके उत्पादन पर हम काम करेंगे, खनिज पदार्थों का उत्खनन करेंगे। ये सारी चीजें कॉमन सेंस से आप ले सकते हैं, लेकिन अगर आपने थोड़े से भी ध्यान से इस समाचार को सुना हो, या यूं कह लीजिए कि आपने और कुछ पढ़ा होगा, तो ढेर सारी बातें आपके दिमाग में और आ सकती हैं। आपने रटा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपने कहीं थोड़ा सा पढ़ लिया है, सुन लिया है, तो बहुत सारी चीजें आप बता सकते हैं। जैसे न्यूज में आप देखिए कि न्यूज में बकायदे सरकार ने यह घोषणा की है कि 2030 तक हम 23 जलमार्ग को यातायात के अनुकूल बना लेंगे। अब ये डेटा हो गया, हमने अंतर्देशीय जलमार्ग की बात कही थी, तो अब ये डेटा हो गया 2030 तक 23 जलमार्ग। तो अगर आप लिखने में इसे शामिल कर देते हैं तो एग्जामिनर ये समझेगा कि नहीं, आपने इसकी अच्छे से तैयारी की है, इसके साथ ही साथ सरकार ने यह भी घोषणा की कि हम जहाज निर्माण को और जो जहाज के मरम्मत है उनको तरजीह देंगे, इसके लिए सुविधाएं जुटाएंगे, हम समुद्री ऊर्जा तैयार करेंगे। ये सरकार ने घोषणाएं की हैं, तो इन्हें भी आप अपना शामिल कर सकते हैं। फिर आप भारत के बारे में सोचिए कि हमारे पास इस रिसोर्सेज के लिए क्या क्या चीजें अभी मौजूद हैं, तो आपको पता लगेगा कि अरे बाप रे, भारत के लिए पास तो बहुत ही सारी चीजें हैं। हमारे टोटल जितने राज्य हैं उसमें से 9 तो समुद्र तटीय राज्य हैं। आप देखिए कि पूरा आपका पूर्वी तट ले लीजिए, फिर पश्चिमी तट ले लीजिए, दक्षिण तट तो पूरा है ही है, तो पश्चिमी तट में गुजरात से नीचे का हिस्सा और पूर्वी तट में आप देखिए कि पश्चिम बंगाल से नीचे का हिस्सा पूरा समुद्री समुद्री तो है, और साउथ तो पूरा समुद्र में है ही। और इसकी दूरी, इसकी जो लेंथ है वो लगभग 7,500 किलोमीटर है, तो ये क्या कम है? हमारे पास कितने द्वीप हैं? ठीक है, उसमें बहुत से अच्छे द्वीप नहीं है या वहां लोग नहीं रह रहे हैं, लेकिन हमारे पास द्वीप बहुत ज्यादा हैं। तो कोस्टल इकोनॉमी के तो हमारे पास बहुत सारी संभावनाएं हैं, ये उसका एक अलग हिस्सा हो जाता है। इसके बाद जो अगला हिस्सा बनता है फ्रेंड्स, वो ये बनता है कि सरकार इसके लिए क्या क्या कर रही है, अभी तक हमने क्या क्या किया है। तो आपको पता लगेगा सागरमाला परियोजना के बारे में मैंने बात की, उसके तहत हम जितने भी बंदरगाह हैं उनको एक दूसरे से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनको अपडेट कर रहे हैं, अंतरदेशीय जलमार्ग विकसित कर रहे हैं। SDG का नाम आपने सुना होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, 2030 तक का जो लक्ष्य रखा UNO के नेतृत्व में ये हो रहा है, और ये पूरी दुनिया के लिए है ना। तो उसमें बहुत सारे लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, उसमें एक लक्ष्य यह भी है कि हमारे जो समुद्री तट हैं, जो उत्पाद हैं, जो जीव हैं, जो वनस्पतियां हैं, इनकी हम रक्षा करें पर्यावरण की दृष्टि से, तो यह भी एक पॉइंट हो गया। इसके बाद सरकार ने ओ स्मार्ट शुरू किया है, एक अम्ब्रेला है, मतलब एक समूह है, नीतियों का एक समूह है, जिसका उद्देश्य यही है कि जो समुद्र के जो रिसोर्सेज हैं उनका कैसे इस तरीके से मैनेजमेंट किया जाए कि हम सस्टेनेबल ग्रोथ उनका कर पाए। तो इस तरह से कुछ तथ्य आपके पास आ जाते हैं, और इन तथ्यों का बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करके आप अपना उत्तर लिख सकते हैं, भले ही आपने इस विषय पर तैयारी न की हो। तो फ्रेंड्स, जानबूझ करके मैंने इस विषय को इस तरीके से बताने का फैसला किया, आप सबके सामने रखने का फैसला किया, ताकि आप अपनी क्षमता को पहचान सकें कि नहीं, इस तरीके से भी तैयारी की जा सकती है। तो फ्रेंड्स, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स के क्लिपिंग्स मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में से दो दोस्तों के नाम हैं, दुष्यंत कुमार दिल्ली से और लवकुश पूजवान भोपाल से, आप सबका बहुत बहुत आभार। और फ्रेंड्स, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।